ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाने कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विजे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै प्रदाने कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय वै वास्मि सवै वास्मि मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम गुरु पाद पद्म ओम विष्णु पाद श्रीमद भक्ति प्रज्ञान के स्वरूप स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडत प्रणति पुष्पांजलि ज्ञापन कर तत्पश्चात उपस्थित त्रिदंडी वैष्णवगण वैष्णवीगण ब्रह्मचारीगण हम सज्जन श्रोता मैं सबसे पहले डोंगरे ब्राह्मण सभा को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने तीन दिन प्रोग्राम यहाँ पर हमारी व्यवस्था की। यहाँ पर तीन दिन है कि पाँच दिन यहाँ पर हमारे जाने के बाद भी तीन दिन होगा दो दिन आज कल
पांच दिन का
हम लोगों ने तीन दिन भागवत कथा और शिव मंदिर में हरि मंदिर में किया और उसी के लगातार में फिर कुछ भागवत की कथाएं सुनाना चाहता हूँ। हमने कहा यद्यपि हम भगवान श्री कृष्ण को देख नहीं रहे हैं किंतु वे तो हमें देख ही रहे हैं। वे अखिल सृष्टाओं के सृष्टि स्थिति प्रलय करने वालों के भी ईश्वर के भी ईश्वर हैं। शंकर हनुमान ब्रह्मा जी दुर्गा जी गणेश जी ये सब उनके किंकर हैं दासों के अनुदास। कृष्ण ही स्वयं राम ये शिव हैं और सब अवतार हैं। तो उनके साथ में कोई संबंध स्थापन कर संबंध तो है ही जीव मात्र का भगवान से क्योंकि हम उन्हीं से निकले हैं किंतु संबंध को हम लोग भूल गए। जो वैसे उच्च कोटि के गुरु हैं उन संबंधों को जानते हैं उन संबंधों से फिर हमारा संबंध करते हैं दीक्षा और मंत्र के माध्यम से और फिर उस संबंध ज्ञान से युक्त होकर ममता कृष्ण मेरे हैं इस संबंध ज्ञान और ममता के साथ में उनका भजन करने से बहुत शीघ्र ही फल मिलता। भजन के तरीके हैं कुछ लोग मनमाने ढंग से भजन करते हैं खूब। एक आदमी कॉलेज न जाए एक्सपर्ट के पास न जाए दिन रात पढ़ता रहे तो उसे काम नहीं चलेगा। डिग्री प्राप्त नहीं कर सकता कोई नौकरी नहीं मिलेगी इसलिए उचित तरीके से, उचित प्रोसेस से, नियमों से हमारा भजन करना चाहिए। ये भजन की प्रणाली ब्रह्मा नारद इत्यादि से चलती हुई अब तक चलती आ रही है। इसलिए उचित तो यही है कि ममता लाने के लिए, किसी से संबंध के लिए किसी योग्य एक्सपर्ट गुरु को हम लोग वर्णन करें। ममता आए बिना, कृष्ण से संबंध जोड़े बिना, मैंने पहले कहा भजन नहीं होता। संबंध तो है, संबंध हम भूले। इसी संबंध के लिए ब्रजवासी जितने हैं, सखा लोग जितने हैं, नंद बाबा यशोदा मैया जितने माता पिता और गांव पास पड़ोस के लोग हैं और गोपियां, सब संबंध से जुड़े हुए। संबंध से ही ममता आती है। ये मेरा शाला है, अब संबंध हुआ तो उसे जुड़ गया ना, तो वो प्रिय हो गया, भाई के समान हो गया। ये मेरी मैया है, ये मेरे पिता हैं। ऐसे भगवान के साथ में पांच संबंध जुड़े जा सकते हैं, जिनमें चार प्रधान हैं। या तो हनुमान जी दास हैं, रामचंद्र जी प्रभु इष्ट देव, इस तरह से दास और प्रभु का संबंध है। एक सखा और सखा, ये अर्जुन कृष्ण के सखा है, ब्रज के सुबल श्रीराम मधुमंगल इत्यादि सखा, इनका और प्रगाढ़ भाव। मैया यशोदा का, नंद बाबा का भाव है संबंध, ये मेरा बेटा है। ब्रह्म होने पर भी, पर ब्रह्म होने पर भी, जगत के सृष्टि करने वाले का प्रभु होने पर भी मेरा पुत्र है, जिसको शिक्षा है, उसको बांध देती है, लठिया बेंद दिखलाती है, जो मैं मालूम तो चोर बन गया, पीछे नजर डकैत बनेगा, क्या होगा, उस ब्रह्म को भी शिक्षा दे रही है। ये ममता का प्रभाव, और ये ममता का ही प्रभाव है जो गोपियों ने कृष्ण के लिए अपने पति को छोड़, अपने पतियों को छोड़ दिया, अपने बेटों को संबंध, अपने माता पिता भाई बंधु सब, यहाँ तक कि लोक लाज धर्म सब कुछ कृष्ण के लिए छोड़ दिया, तो कृष्ण उनके ऋणी बन जाए। ऐसे ही कोई व्यक्ति भगवान के लिए, कृष्ण के लिए सचमुच घर बार छोड़ा है, स्त्री पुत्र मैया और जगत की संपदाओं को छोड़ा है, जैसे हमारे ब्रह्मचारी लोग हैं, देख रहे हैं सन्यासी लोग, सब कुछ छोड़ दिया किसके लिए, कृष्ण के। अब एक बार भी घर नहीं जाते, घर वाले इनके लिए रोते हैं और ये लोग प्रभु के लिए रोते हैं, तो कृष्ण इनके लिए रोएंगे। अभी दर्शन तो नहीं रहे हैं, बात ठीक है, कंठा बढ़ रही है, बढ़ते 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 भजन का बल बढ़ते एक दिन को अपना, अभी दर्शन दे नहीं रहे हैं, विरह उत्कंठा बढ़ा रहे हैं, ये भी उनकी बहुत विशेष कृपा है। इसी दृष्टि से अब हम दशम स्कंद की कथाओं को अब लेकर चलेंगे, आप लोग सुनेंगे, और कृष्ण से उसी प्रकार से संबंध और ममता जोड़कर पांचों चारों में से कोई एक भाव खूब आनंद से भजन कीजिए, उस समय थोड़ा सा भी भजन करने से वो काम बन जाएगा। जैसे एक आदमी दिन रात भजन करता है किंतु संबंध नहीं है, और दूसरा एक संबंध ज्ञान के साथ थोड़ा भी भजन करता है तो उसका कितना मूल्य है, ये उदाहरण से समझाता हूं। एक रानी है, राजा रानी, राजा के साथ में उसकी शादी हुई, उसके घर में एक नौकरानी है, दिन रात काम करती है, किंतु राजा को कौन प्रिय है, रानी प्रिय है ना वो दासी प्रिय है, नौकरानी, उसको पैसा दे दिया गया, लेकर के चली गई। और पत्नी को पैसा महीना देना पड़ता है, वो तो उनकी अपनी हो गई, वो कोई सेवा नहीं करती, और नौकरानियों से सेवा कराती है, बीमार पड़ जाती है तो उसके लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। ये क्यों? यही संबंध, संबंध क्या है? संबंध
अभी भी आप
संबंध जानिया, आठ सौ अकार
आश्रय लइया भजे,
संबंध लइया जे भजे,
सारे कृष्ण नाही
तो उसको कृष्ण नहीं छोड़ते,
और सब मरे,
और सब मरे आकार। और वो लोग भजन करते हैं किंतु ठीक से भजन नहीं कर पाते, इसलिए इस विषय को समझ करके भगवान का भजन करना चाहिए। अब ममता कितनी किसकी है, कितनी उत्कंठा से भजन ब्रजवासी लोग करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, वे साधक नहीं है, किंतु भागवत में उनकी कथाएं इसलिए दी गई हैं, उसको सुनकर पढ़कर विशेष करके श्रवण कर साधु संतों के मुख से हमको भी वैसा ही संबंध और ममता कृष्ण में जगे। इसलिए कृष्ण जगत में आते हैं और अर्जुन को उपदेश देते हैं गीता का, और उद्धव जी को भागवत का उपदेश देते हैं, और अपनी इन लीला कथाओं के माध्यम से बड़े बड़े संदेश हम लोगों के लिए छोड़ते हैं। यदि कृष्ण के साथ में माता पिता का संबंध जोड़ करके कोई भजन करता है, कृष्ण को अपना पुत्र मानता है, तो यशोदा जैसा भाव। कृष्ण ने कहां जन्म लिया? लोग कहते हैं कि मथुरा में जन्म, मथुरा में जन्म लिया, यह बात तो ठीक है, किंतु अंश रूप, आंशिक रूप, पूर्ण रूप से नहीं। पूर्ण रूप में कहां? नंद यशोदा के घर में वो पूर्ण रूप से जन्म, आधी रात के समय में भाद्र मास की अष्टमी के दिन देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, जिस प्रकार से पूर्व दिशा से सूर्य उदित हो गए। कैसे प्रकट हुए? बाल गोपाल के बेबी के रूप में नंगे पैदा हुए कि नहीं? नहीं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके सोने के आभूषणों से मुकुट से युक्त हो करके बड़े सुंदर रूप में प्रकट हुए, धोती इत्यादि पहने, पीताम्बर पहने। ऐसा किसी को बच्चा पैदा हुआ कहीं सुना कोई? 16 वर्ष की उम्र जैसा एकदम गर्भ से निकला, और गर्भ का संस्कार जो होता है, गर्भाधान संस्कार, नाड़ी छेद इत्यादि, मथुरा में नहीं हुई। ये कहां हुई?
गोकुल में,
गोकुल में यशोदा के साथ। इस तथ्य को लोग जानते नहीं हैं, भागवत में ही ऐसा लिखा है, किंतु इतना गूढ़ अर्थ है कि लोग समझ नहीं पाते। तत्रांशेन अवतीर्णो भगवान देवकी सुतः, अंश के रूप में, किसके अंश के रूप में? यशोदा के गर्भ से जो नंद नंदन यशोदा नंदन जो प्रकट है, प्रकट नहीं बल्कि पैदा हुए। और कैसे पैदा? वहां नाड़ी छेद हुआ, उत्सव हुआ बहुत, नंद बाबा ने लाखों गायें दान की, सबको स्नान कराया गया यशोदा को, इसलिए वहां पर पूर्ण। वो दो जगहों की तो बात क्या, करोड़ों जगहों में वो एक साथ में हो सकते हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। ऐसा मत सोचिए यही एक जम्बू है, यही एक भारतवर्ष है, और यही एक पृथ्वी या विश्व है, ऐसा मत समझिए। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं और करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में एक भारतवर्ष है और उसमें एक वृंदावन है, गोकुल है, और उसी के अंदर में यहाँ पर एक जंबू भी होगा उस ब्रह्मांड में। ये जंबू वाला छोटा है या ब्रह्मांड जो गोकुल वाला है सबसे छोटा है, और यहाँ पर सबसे छोटे ब्रह्मा जी चार मुख वाले रहते हैं और ब्रह्मांडों में करोड़ों मुख वाले ब्रह्मा वहां पर रहते हैं। उनकी उनका ऐश्वर्य इतना है, चिंता करते करते पागल हो जाएंगे तो अभी कोई था आदि अंत नहीं मिलेगा। ब्रह्मा भी ऐसे करते 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 थक गए और अंत में प्रार्थना करके बोले, जो कहते हैं कि मैं ब्रह्म का, पर ब्रह्म का, कृष्ण का ऐश्वर्य जानता हूं, वे भले ही पृथ्वी की धूली को गिन सकते हैं, पृथ्वी को धूली को गिनना सहज है, और आकाश के समस्त तारों की गिनती कर सकते हैं भले ही, किंतु भगवान के ऐश्वर्य की लीलाओं का कोई था नहीं ऐसे। तो इसलिए करोड़ों कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में अभी उनकी लीला चल रही होगी और एक लीला एक स्थान से चल करके फिर उसी स्थान पर पहुंचती है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। बड़ी अद्भुत चीजें हैं। यदि इस मनुष्य जीवन में हमने भगवान का भजन कर लिया तो ठीक है, और नहीं तो ब्रह्मा का एक दिन और हमको खोना पड़ेगा, इसके बीच में और कोई ठहराव नहीं। ये समझिए, घूमते रहेंगे। एक कहानी है, कोई एक भीख मंगा, भीख मांगता हुआ किसी जगह गया तो देखा, देखा नहीं तो एक दरवाजा मिला, तो दरवाजे में घुस गया और भिक्षा दो अथवा राधे राधे कोई कुछ कहने लगा, किंतु कोई उसमें मिला नहीं जो उसको भिक्षा दे, और उसका अंदर 84 लाख मील लंबा चौड़ा था ही नहीं पा सका, वो चलने लगा, जन्म न जन्मांतर चलते 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 चल चल, जब दरवाजे के सामने आया, 3.5 हाथ का दरवाजा था, जो ही आया उसको खुजलाहट हुई, सिर में खुजलाने लगा और सोचा जे इतने दिनों तक दरवाजा नहीं आया तो आज ही थोड़े आ जाएगा अभी 1 मिनट, और वो खुजलाने लगा, दूसरे हाथ में डंडा लेकर के चलने लगा, इतने में
दरवाजा
पार हो गया 1 सेकंड में। फिर हाँ सर, ऐसे समझो मनुष्य ने भगवान दिया है 84 लाख योनियों के बाद में, और इस जन्म में भजन नहीं किया, न कि गधे घोड़े सुअर न जाने क्या होंगे, न देवता होंगे, गंधर्व होंगे, क्या होंगे, फिर मनुष्य जन्म नहीं हो, देवता लोग मनुष्य जन्म पा करके इस भारतवर्ष में जन्म लेना चाहते हैं। मैं संसार में सर्वत्र कोने कोने गया, कई भगवान का भजन का कोई भी चिन्ह लक्षण नहीं है, और इसीलिए वे करोड़पति हैं। भारतवर्ष के धनी लोग क्या है, बिरला टाटा कुछ नहीं, उनके नौकर होने योग्य है, उनकी एक दिन की आयु है जितनी इनके जीवन की आयु हो, और सुखी नहीं है सुन करके इस घर में आते। इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, हरि कथा सुन रहे हैं, और समय नहीं है, नष्ट मत कीजिए, न जाने कब मृत्यु आ जाए, कल करो सो आज कर, आज करो सो अब प्रलय, पल में प्रलय होएगी, बहुत करोगे। इसलिए इस प्रकार से अब कृष्ण ने गोकुल में जन्म लिया। जो सोदा जी की ममता कैसी है कृष्ण के प्रति, नंद बाबा की, इसको थोड़ा सा समझने के लिए पुतना का उद्धार का उपाख्यान आप लोग सुनिए। हमारे तीर्थ महाराज जी आपको संक्षेप में सुनाएंगे, सभी लोग संक्षेप में बोलने की चेष्टा। उपाख्यान और उपाख्यान का तात्पर्य बतलाऊं।
भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद परिकर हैं, वे प्रेम पूर्वक पूर्वक कैसी सेवा करते हैं, जिस सेवा के द्वारा भगवान को स्वयं आनंदित करते हैं और भगवान स्वयं उनसे आनंदित होते हैं। इसलिए प्रेम पुरुषोत्तम की लीला भूमि है ब्रजभूमि। भगवान श्री कृष्ण जो है 16 तलाओं में परिपूर्ण है, लीला पुरुषोत्तम है, रसोमयी से है। वे अपने गुणों के और माधुर्य के तथा ऐश्वर्य के पराकाष्ठा है, वे उनके खान है। भगवान के पास में, कृष्ण के पास में जो कोई व्यक्ति जैसे भी आए हो, कोई कैसे भी आए, उन सब को उन्होंने अपनाया, क्योंकि कृष्ण है। कृष्ण शब्द की उत्पत्ति करते हुए बताया जो कि कृष्ण वाचक शब्द वाचक, जो सर्वाकर्षक है, विश्व के चुंबक है, सबको आकर्षण करके रखे अपने रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी और वेणु माधुरी। इस प्रकार माधुरी की जो माधुर्य की पराकाष्ठा चमत्कारिता है, उन गुणों के ध्यान भगवान ने सबको आकर्षित कर रखा और सबको आनंद प्रदान करते हैं, सबको आनंदित करते हैं। जीव जात बहिर्मुख है, माया में संसार में भूले हुए हैं, भटके हैं, तब उसके अंदर सुख की लालसा, भोग की वासना होती है, तब विषयों की ओर दौड़ते रहते हैं। भगवान जो है पूर्ण चेतन है, वे जीवों के अंदर उस चेतना को प्रदान करते हैं। जब जीव उन्मुख होता है भगवान के प्रति, उनका भजन करने लगता है, तब उनको कृष्ण भक्ति रस प्राप्त होता है और उस भक्ति रस में वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, पूर्ण चेतना का विकास होता है। तो भगवान श्री कृष्ण की है क्या है, सबके आनंद प्रदाता, सबके अंदर चेतना को जगाने वाले, परंतु हम भूले भटके हुए। इसलिए शास्त्र पुनः पुनः हमें उपदेश देते हैं, भगवान कृष्ण कैसे दयालु हैं, जिनके गुणों का परिचय देते हुए कहा, अहो बकीजम स्तनकाल कुंटम जिघं सय
और पुतना भी उस समय
बड़ी सुंदरी अप्सरा जैसी माता का वेश धारण किया, स्तन में काल को विष लगा करके आई, जो पूर्व जन्म में पहले जन्म में बलिराज की कन्या थी रत्नमाला के रूप से। जब भगवान वामदेव आए छोटे से गौना बटुक, उस बालक को देख करके ऐसी मुक्तसी हो गई, उसके अंदर स्नेह ममता आ गया कि इस बालक को गोदी में लेकर के दूध पिला, परंतु हो नहीं पाया कि उनके पिता के साथ साथ उनको पैर धुलाए, चरण में पिया पिया अर्चना की और बात करने लग गए, मौका नहीं मिल पाया। जैसे वामनदेव ने त्रिविक्रम रूप धारण किया, सारा राज्य छीन लिया और बलि महाराज को नागपाश में बांध दिया, उस समय रत्नवाला बोले, बारे ऐसा दुष्ट है, ये विष्णु है, हमारे पिताजी का सारा सब कुछ छीन लिया, नागपाश में बांध दिया, मैं पहले जाति को स्तर में विष लगा करके इसे मारा। भगवान ने कहा, अच्छी बात है, तुम्हारी भावना है, इस भावना को अवश्य पूरा करूंगा। उतना वही उतना बन करके आए, स्तन में काल को विष लगा करके, और जबकि इतने सुंदर रूप धारण करके, माता का वेश धारण करके जब अंदर पहुंची तो किसी ने कोई भी रोका नहीं। माधव सुधा ने सोचा, इतनी सुंदरी, क्या ये ब्रह्मानी है, रुद्रानी, इंद्रानी, लक्ष्मी, कौन है, जैसे भी हो देखने में जितना सुंदर लग रहा है, जैसे हमारा बालक है वैसी ये स्त्री भी वैसी सुंदरी, इसके मां होने योग्यता भी नहीं। तो इतना उसके प्रति गर्वबोध करने लगे। देखते देखते पुतना ने उस बालक को गोदी में उठा लिया और बड़े आदर के साथ लाल प्यार के साथ में स्तनों में मोह लगा दिया। तो जैसा बोले, चलो लाल प्यार कर रही है तो अच्छी बात है, मैं तब तक के कमरे में से घूम के आऊं, कोई काम के लिए चली गई, जेल में गई। और इधर पुतला ने जो कि कालकूट में लगा रखी थी वह मोह में लगा दी। बाल गोपाल ने सोचा, अच्छा तो कालकूट में भक्त लोग तो फल फूल मिठाई ये सब हमारे लिए उपहार लाते हैं, अब तुमने हमारे लिए उपहार लाया कालकूट में, कोई बात नहीं, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु इस पाप शरीर से मैं तुम्हें छुड़ा करके ऐसी एक उत्तम गति प्रदान करूंगा जो कि संसार के सभी लोग चमक जाए। वही हुआ, पुतना को जंतुना के मारे छोड़ छुड़ाने का प्रयास किया, कर नहीं सकी। उस समय जंतुना में छटपटाती हुई उस बाल गोपाल के साथ में एकदम बाहर निकल आए, बड़ी विकराल मूर्ति में विशाल, जिसको भागवत में वर्णन करते हैं, जिसका शरीर 12 मील लंबी चौड़ी, कंस के आम की बगीचा थी। तो जा करके गिरी तो गिरे एकदम बगीचे के ऊपर में, बोले लगने भी किसी को ढोना नहीं, साथ में लेकर के ही एकदम गिरी, धड़ाम से गिरी, गिरते ही बच्चे ऐसा आवाज हुआ और बड़ा आंधी तूफान मच गया, चारों और कड़कड़ाहट की ध्वनि से गूंज उठा, सभी लोग चमक उठी, ये क्या हुआ, कहां से इतनी जोर की आवाज आई, सभी लोग दौड़ पड़े। माधव सुधा भी बाल गोपाल के लिए बड़ी विकल होकर रोने लगी। इतने में ब्रजवासी लोग दौड़ करके गए और पुतना के वक्ष स्थल से बाल गोपाल को उठा के लाए, कृष्ण को जो कि माता यशोदा के गर्भ में थी, उन्होंने दूध पिलाया तो भी चैन नहीं, उसको रक्षा कवच पार करते हुए गोबर गोमूत्र से स्नान कराते हुए शुद्धि संस्कार आदि करने लगे, कहीं बालक को किसी प्रकार कोई अनहोनी न हो जाए। इधर में पुतना जो कि बाल घातिनी राक्षसी रुधिर आसना जिघा क्षया हरे स्तनम दत्या को सर्वति, वह पुतना जो पुत नहीं है, सदा ही अपवित्र है, अथवा जिसके कोई बालक है ही नहीं, दूसरे बालकों को मारने वाली, खून पीने वाली ऐसी जो राक्षसी पुतना जो पाप शरीर में थी, बाल कृष्ण ने उनको अपना लिया, उस पाप शरीर से छुड़ा करके भात्री जैसी माता की गति गोलोक वृंदावन में दे दी। जिघम से आप इनको भी मारने के लिए आए, जो माता का वेश धारण किया था इसी कारण भगवान ने उनको परम ज्योति दे दी। तो इसलिए ब्रह्मा जी का अभिस्मरण कराया जरूरी है, जो कि ब्रह्मा जी कहते हैं हे भगवान, आपने पूतना जैसी राक्षसी को एक भात्र गति दे दे, तो आपके जो भक्त जन भक्ति पूर्वक आपकी सेवा पूजा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, उनको आप क्या देंगे? इन ब्रजवासियों को आप क्या देंगे? आप तो स्वयं अपने को भी बेच डाला, उनको सर्वस्व समर्पण कर दिया, इसमें तो मेरी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, आप भक्तों को क्या देंगे? जो महान प्रेमी भगवान श्री हरि प्रेमोमय लीला करते हैं, वे अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में समर्पण किए, भक्तों के पास में अपना सर्वस्व समर्पण कर देते। अब यह आपने सुना था ब्रह्मा जी की, जो कि जो ब्रह्म रुद्र शूर्प नाद भीष्म मुक्तय रालक्षित न सहसा पुरुष सप्त बची कर्ण चूर्ण मनंत सर्पि तम श्री राधिका परिचरामि कदावसि। जो कि ब्रह्मा रुद्र शूर्प नाद भीष्म प्रमुख महाजन बड़े बड़े महाजन ब्रह्मा जी रुद्र महादेव जी है और सुखदेव गोस्वामी बड़ी बड़ी नारद जी जैसे वे लोग ब्रजभूमि में आए, ब्रह्मा जी की लीला देख करके भगवान की लीला देख करके मुक्त हो गए। जबकि अघासुर जो पाप की मूर्ति उसके मुंह के अंदर चले गए, जो कि कमल नयन है, जिनके चरण कमल अतिशय सुकमल है, जिनकी सुंदर भुजाएं हैं, जिनके मंदर मुस्कान है, जिनके गले में बनमाला है, जिनके पहनावे में पीतांबर स्थिर बिजली जैसे, इस प्रकार दिव्य कांति भुवन मोहन, जो कि बाल गोपाल रूप में बच्चों के साथ में खेलते खेलते उस पाप के मूर्ति और हसन के मुंह में चले गए, और न जाने अंदर में जा करके कैसे हाथ की गोला या लोहे की गोला अटक गए गले में, और वो सांप कुछ पछाड़ते पछाड़ते अब सांप पर उड़ लिया, उसकी आत्मा दिव्य ज्योति के रूप में निकल के आकाश में चली। देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण जब की बालकों को लेकर के बाहर आए तो ब्रह्मा जी ने देख करके प्रार्थना की, हमें भगवान की लीला देखनी है कि मुक्त जो पापी भी पाप भी से मुक्त हो जाए, उनकी लीला देखने के लिए आए। ऐसे ब्रह्मा जी जब भगवान की ऐश्वर्यमय लीलाओं को देखा, कुछ बछड़ों को और सखाओं को चुरा लिए, संग्रह में छिपा दिए, एक बरस तक चले गए, और उस समय भगवान ने जितने बछड़े और सखा थे उन सब के रूप में ऐसे प्रकट हो करके लीलाएं करते रहे, किसी को कुछ भी पता नहीं चला। एक बरस बाद में आकर के कंदरा के ढक्कन खोल करके देखा, जो कि त्यों बच्चे सब बछड़े सब सोए हुए हैं, उनको जगाया, उनको निकाला, और वे सब दौड़ करके गए कृष्ण के साथ में उन सखाओं के बीच में मिल गए। उस समय ब्रह्मा जी ने बार बार प्रणाम करते हुए एक एक बार देखते हैं अद्भुत अद्भुत ऐश्वर्य, जितने भी मूर्तियां हैं सभी कृष्ण ही कृष्ण बने हुए, एक बार देखते हैं सभी चतुर्भुज रूप में बने हुए हैं, एक बार देखते हैं आलम्ब स्तंभ सभी कृष्ण की हाथ जोड़कर स्तुति प्रार्थना करते हैं, और एक बार देखते हैं जलसाई नारायण के रूप में, तो अद्भुत अद्भुत भगवान के ऐश्वर्य महिमाओं को देखा, और देख करके वे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैं जो कुछ भी समझ नहीं सका, आपके तत्वदर्शन मेरे विचार और बुद्धि से परे हैं, मैं जो कोई जाने जाने सो मैं मन वचन वाणी के द्वारा मैं आपको समझ नहीं सका, हे प्रभु आप इतनी कृपा कर दे इस ब्रजभूमि में मुझे तीन दुर्बलता होकर के कहीं जन्म हो जाए, कहीं एक पत्थर का टुकड़ा होकर के जन्म हो जाए, ऐसी भी प्रार्थना करते हैं। आज आप लोग कोई ऐसे पर्वत हैं जहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं पर्वत बन करके राधा कृष्ण की मन में महेश लीलाओं का आस्वादन करते हैं, अनुभव करते हैं। जहाँ शिव की नंद गांव में नंदेश्वर पर्वत बन करके विराजमान है, जहाँ पर राधा माधव की ऐसी मधुर लीलाएं होती हैं, जहाँ नंद गांव में भगवान श्री कृष्ण जहाँ विराजमान है, ऐसी ऐसी अद्भुत अद्भुत जहाँ लीलाएं हैं। और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना भी इन लोगों के लिए अति दुर्लभ, ऐसे पर जहाँ लीलाएं करते हैं वह लीला भूमि ब्रज भूमि है, जहाँ प्रेम की भूमि, जहाँ उन्होंने प्रेम का आस्वादन किया और आज भी करते हैं, आज भी उनकी बंसी बजती है, आज भी उनकी लीलाएं चल रही हैं। इन्हीं कथा के साथ
आप लोगों ने पुतना का उद्धार के संबंध में सुना। एक प्रश्न हो सकता है कि भगवान को उनका तो है, वो निराकार है। बहुत से लोग आजकल निराकारवादी हैं, क्रिश्चियन लोग निराकारवादी, हमारे मुसलमान भाई लोग भी निराकारवादी, भगवान की मूर्ति को नहीं मानते। बौद्ध लोगों का वैसा ही है, जैनियों का भी विचार वैसा ही है, केवल हमारे सनातन धर्म ही भगवान का रूप है। इसके लिए थोड़ा सा बतला भी समझा दी जो आप लोग ठीक हैं वो लोग गलत है। कैसे? रूप शब्द है, गुण शब्द है, आकार शब्द है, इसमें उपसर्ग लगाकर और रूप निर्गुण निराकार बनता है। निराकार शब्द से आकार नहीं बनता, अरूप शब्द से रूप नहीं बनता, गुण शब्द निर्गुण शब्द से गुण नहीं बनता, बल्कि गुण आकार रूप इत्यादि से ही ये शब्द बनता। इसलिए मूल में भगवान का रूप है। यदि भगवान का रूप नहीं है तो इतने रूप कहां से आए? भगवान ने सृष्टि की, इसको सब सब कारण बात कहते हैं, कॉज एंड कॉज एंड एक्शन थ्योरी। मैया का रूप है, पिता का रूप है तो बेटे का रूप है, माता पिता न मिले तो बेटा होगा, उसका रूप कहां से आएगा? तो जगत के माता पिता तो कृष्ण है, भगवान है, तो उनका रूप नहीं है तो कहां से इतना रूप आ गया? आम के बीज से आम का पेड़ होता है, इमली के पेड़ से इमली का पेड़ होता है, बिना किसी बीज का कोई पेड़ हो जाए तो नहीं होगा। इसलिए हमारे भगवान को कहा गया है पूर्ण मदम पूर्ण मृदम पूर्ण पूर्णम उच्यते पूर्णस्य पूर्णम एव पूर्ण। हमारे भगवान इंफिनिटी है, पूर्ण है, इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव इज इक्वल टू इन्फिनिट, पूर्ण माइनस पूर्ण इज इक्वल टू पूर्ण। ये भगवान है, परिपूर्ण है, उनका रूप है, गुण है। इसलिए बाइबल में भी लिखा गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, गॉड ने मनुष्य को अपने रूप के समान रखा है, बनाया। कुरान के हदीस में भी यही है, इन्ना लाहा खलाका मिन सूरत, भी भगवान ने अपने सूरत के समान मनुष्य को बनाया। इसलिए सभी धर्मों में ऐसी बातें हैं, यदि मूर्ति नहीं है तो जैन की मूर्ति बना करके उसकी पूजा क्यों करते हैं? जयपुर में जाइए लाखों बन रहे हैं जैन की मूर्ति, महावीर की और बुद्ध की, लाखों मूर्तियां,
और बनती है कैसे? हमारे ठाकुर जी की मूर्ति इतनी बड़ी लंबी ऊंची नहीं है, वो 20-20 फुट 25 फुट लंबी ऊंची बनती है। यदि भगवान का रूप ही नहीं है तब क्रिश्चियन लोग चार चक्कर बनाते हैं, उसमें कौन रहेगा? हवा रहेगी? मस्जिद की क्या जरूरत है? यदि खुदा अल्लाह का रूप ही नहीं है तो तुम इसकी जरूरत क्या है खुले आकाश में करें? ध्यान किसका करते हैं? कोई ना कोई शिष्य का ध्यान करते हैं, मन से भी जो ध्यान करते हैं वो भी भूत परिश करे, भूतों की पूजा है। इसलिए हमारे सनातन धर्मावलंबी कृष्ण का जो सबसे सुंदर रूप है, मनोहर मुक्तकारी रूप है, उसका भजन करते हैं। वे सभी रूपों में आते हैं, वही वही अल्लाह है, वही खुदा भी है, वही गॉड है, वही सब कुछ है। एक बार जेसस कृष्ण जो का जेसस इंडिया में आए, बचपन में वृंदावन में गए, फिर जगन्नाथपुरी गए और सब घूम करके तब फिर अपने देश में गए। वृंदावन आए तो सब लोग कृष्ण कृष्ण उनको कह रहे हैं, राधे राधे कृष्ण कृष्ण। जब जगन्नाथपुरी गए तो कृष्ण को कोई कृष्ण भी कहता है, किंतु अधिकांश वहां के जो बाशिंदे हैं उनको कृष्ण कहते हैं, कृष्ण से ही कृष्ण। और नीचे जाने पर क्रिस्ट, और वही जबकि अंग्रेजी भाषा में उधर गए तो वही क्राइस्ट का है। तो ये कृष्ण से ही कृष्ट, क्रिस्ट और क्राइस्ट। लोग समझ नहीं पाते हैं, भगवान तो दो है नहीं, अल्लाह खुदा सृष्टि करने वाले एक ही है, चाहे वो विश्व ब्रह्मांड की सब कहीं भी सृष्टि करते हैं। भाषा भेद से उनका नाम लिया जाता, देश भेद से उनका नाम। इसलिए आप लोग ठीक हैं, ऐसा गर्व अनुभव करेंगे हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं कृष्ण के उपासक, और सचमुच में एकांतिक रूप में उनकी उपासना। प्रेम के कैसे वशीभूत हो जाते हैं आपने देखा, जसोदा के बेटे होकर के आते हैं, प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं आंशिक रूप में तो देवकी के गर्भ में आते हैं, वही अब कौशल्या के गर्भ में आते हैं राम के रूप में, वही कभी बामन के रूप में आते हैं। इस प्रकार से हम लोगों पर कृपा करके आते हैं। इसलिए हम लोगों का सौभाग्य है कि भगवान के जितने भी रूप हैं हमारे भारतवर्ष में, विशेष करके वृंदावन अयोध्या ये सब देख रहे सप्तपुरिया है इस भारतवर्ष में। इसलिए हम लोग गर्व अनुभव करते हैं, विदेश से देखिए हमारे साथ में सब आए हैं 600 लोग, अभी वृंदावन परिक्रमा होगी, आप लोगों को भी निमंत्रण है, उसमें 700-800 की हजारों विदेशी आएंगे, देशी आएंगे, सब लोग मिलकर के हम वृंदावन की परिक्रमा करेंगे और साथ साथ में भागवत का प्रवचन होता जाएगा, कौन कौन कहाँ कहाँ भी जाएंगे, उसकी पवित्र धूलि लगने से भी हृदय पवित्र हो जाएगा। कृष्ण अपने प्रेम को रिन्यूअल करते हैं, हम कोई लाइसेंस लेते हैं तो उसका रिन्यूअल फिर से वर्ष में एक बार उसका रिन्यूअल करते हैं, नया कर नवीनीकरण। कृष्ण भी अपने प्रेम का रिन्यूनीकरण करते हैं, नवीनीकरण। कभी पुतना आ जाती है, कभी तृणावर्त, कभी शकटासु, और फिर गोपियां अपने हृदय से कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहती, उनमें प्रेम नया नया प्रकाश है। ऐसे प्रेमों में से उनकी लीलाओं में से एक दाम बंधन लीला है, बहुत जिसने जसोदा मैया ने सृष्टि करने वालों के ईश्वर पर ब्रह्म श्री कृष्ण को भी बांध दिया। आज तक किसी भी इतिहास में किसी भी शास्त्र में उनको बांधा नहीं, किंतु जसोदा मैया ने बांध दिया और लठिया दिखा करके बेहतर मालूम किसको पर ब्रह्म को, जिसको जिसका नाम लेने से भय भी दूर हो जाता है, और वो प्रभु जो सुधा मैया के डर से रोते हैं अभिनय नहीं करते। इसके संबंध में रसानंद ब्रह्मचारी जी आपको दामोदर धन लीला का श्रवण कराएंगे किंतु समय रखेंगे 6:15 / 6:30 के अंदर में शेष होनी चाहिए क्योंकि धर्म अंधकार हो जाता है और बहुत से उपद्रव होने की संभावना रहती है, इसलिए संक्षेप में बताएंगे। अभी और लोग वक्ता भी बोले
तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म निखिला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोदश दशमी श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिंह गोस्वामी महाराज को चल रहे अनंत साक्षात तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म परिप्राज आचार्य गोस्वामी नारायण गोस्वामी महाराज को चरण सकेंगे श्रद्धा गोस्वामी उपस्थित वैष्णव वृंद एवं माता पिता शरण जगानी को प्रणाम करें। अभी अभी आप लोग श्रवण किया है कृष्ण कैसे कृष्ण जिसको पितामह कहते हैं अजो ईश्वर का अभयात्मा भूताना ईश्वर अपिसर प्रकृति समाधिष्ठाय संभवाम आत्माय। कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन मैं अजो हूं, मेरा जन्म नहीं है लेकिन अजो होते हुए भी जन्म रहित होते हुए भी लेकिन अपना योग माया को आश्रय करके भक्तों को विभिन्न रूप में आनंद देने के लिए अपना योग माया को आश्रय करके जगत में जन्म लेता हूँ और अपना लीला को द्वारा भक्तों को मन को प्रेम रसों में संपूर्ण रूप में डुबो देता हूँ। इसलिए कृष्ण कैसे बराबर करते हुए भी गोकुल को गली गलियों में कैसे कन्हैया कैसे लीला करते हैं जो लीला दर्शन करने के लिए स्वयं शंकर भी स्वयं आते कैलाश से प्रभु जी बहुत सारी लीला देखाएंगे मत सतगुरु प्रभु जी बहुत बता रहे हैं लेकिन मैंने यह लीला नहीं देखा जो अजल होते हुए जो जन्म ग्रहण किया सारा दुनिया को पालन हार होते हुए भी जिसको स्वयं मैया को सदा भी लाल लड़ा रही है स्वयं मैया को सदा जो मूर्ख पिला रही है और उनको प्रेम के बसीभूत होकर के कृष्ण कैसे बाल्य चरित्र करते हैं स्वयं शंकर के दर्शन करने के लिए ब्रज गोकुल में स्वयं शंकर भी आते हैं और मैया यशोदा बड़ी कठिनाई से बड़ी कठिनी से उन्हें अपना बाल गोपाल और कृष्ण कन्या को दर्शन देती बड़ी कठिन से केवल एक झलक दर्शन देती उसी में ही शंकर अपना जीवन को कृत कृत मानते हैं प्रभु जी की एक झांकी का दर्शन मिला है ऐसे प्रभु की लीला है। इसलिए कृष्ण कन्या जब गोकुल में आए अभी कन्या हर ब्रज गोपियों को घर घर में मक्खन चुराते हैं सारा दुनिया का मालिक होते हुए भी घर घर में मक्खन चुराते हैं और ऐसे मक्खन चुराते हैं जिस लीला के द्वारा कृष्ण कन्या ब्रजवासियों को पूरा लीला रस में डुबो देते हैं। अभी रोजाना ब्रज गोपियां आकर के मैया यशोदा के पास की शिकायत करती है कहते मैया तेरे लाला को घर घर में हमारा मक्खन चुराता है। मैया बोली मेरे लाला तुम्हारे घर में मक्खन चुराता है क्या कहा जा सके फिर मेरा विश्वास नहीं है हमारा घर में कहीं दूध दही कमी है नंद बाबा के नए लाल मैया है अभी भी नंद लाल में लाल थे वहां पर एक छाछ का कुंड है इतने छाछ बात करता था पीने वाले प्रेमी थे उसको उसमें हमारे तालाब में गुणाव देते थे अभी भी वही शांत कुंड है उनको घर में दूध दही की नदी बहती है अरे आप लाला तुम्हारे घर घर में मक्खन चुराता है मेरा विश्वास नहीं मैया कृष्णा बोली अगर एक बार मेरे को रेंगे हाथों से पकड़ा दो फिर तो मैं मान लूंगी बेटा ठीक है। अभी कृष्ण कन्या सचमुच से कन्या को मक्खन चुराने आ गए थे कि तो मक्खन चुराएंगे अभी सचमुच से आते हैं कन्या आए इधर देखे उधर देखे पीछे देखे कहते कोई तो है नहीं कहते ना कोई है नहीं वीडियो गोपी घर को दरवाजा के पीछे छुप करके बैठी, यही प्रभु की लीला की वैचित्रता है। जो घटनावासी है, जो विश्व ब्रह्मांड का कार्य करने विद्यमान है, लेकिन उनको क्या पता थी ब्रज गोपी बनन बैठी, यही उनको विचित्र लीला है। अभी कृष्ण जब धीरे धीरे अंदर गए और मटकी उतार करके जब मक्खन खाए, इतने में तो ब्रज गोपी हाथ को पकड़ ली, आज तो उनको मैया दशरथ को पास में लेकर जाऊंगी। गोपी एक बार छोड़ दे, कभी आएगा भी कभी आऊंगा नहीं, तेरे पांव पकड़ता हूँ, तेरे सांस की पांव पकड़ता हूँ, तेरी नानी की तेरे पति की मेरे बदल छोड़ दे, तेरे छोड़ दू मैया रस्ता मानती नहीं, आज तो जरूर लेकर दिखाऊंगी। अभी जोर जबरदस्त पकड़ कर लाई, जब उनको पकड़ करके ला ली, ऐसे जोर में आया कि क्या तेरा सामने नंदोबा बैठी है, नंदोबा पर जेब लगते है। अभी जेब को देख करके पीछे से दरवाजा से उनको कन्हैया लेकर कहा, इतने में अपना घूंघट उतार दिए और कृष्ण के ऊपर वही कपड़ा लगाए। जब पीछे दरवाजा से वो प्रतियोगी आ करके जोर जोर से उनकी जो आवाज लगाई, कहते मां जसोदे देखो तू तो मानती नहीं, तेरे लाला मखन चुराता है, देख आज तक अपने हाथों से पकड़ करके लाई। लेकिन मैया दशरथ कन्या को अंदर में थप थप लगा करके समझा रही थी, मैया दशरथ तुम क्या बोल रही है बाबी, मैया दशरथ कैसे निकल कर कहे कहा बात है, कहते मैया तुम नहीं मानती हो, तेरे लाला मक्खन चुराता है, आज तुम्हें पकड़ करके ला लू। लेकिन यही कृष्ण विचित्रता है, जब उसको कपड़ा रख दी और अपना घूंघटों को खींची, इतने नहीं कृष्ण को गल गए। अभी मैया दशरथ छोटी कन्या मेरे घर में सो रही है, जब जसोदा बाहर निकल कर गाली देखिए अपना बेटे को ही चोर बना करके लाए हैं, क्या वो पादरी मत गई, अपना बेटे को तुम चोर बना करके लाई हो, मेरे लाला के घर में अंदर सो रहा है। इतने में कन्या आंख को मसल के हुए रो रो कर गाए, भैया देखी ये झूठ मूठ का कैसे मेरे नाम में सिखा लगे, मैं तो घर छोड़कर कभी जाता भी नहीं, मैं तो घर ही रहता हूँ, तू तो मेरे को सवेरे होते ही मधुबन में भेज देती हूँ गया चलाने के लिए, वहां से दिन भर हम घूमते घूमते आकर रात को तेरे गोद में सोता हूँ, बताता मैंने मछली चलाया। तो बोली आश्चर्य में पड़ गई, ये कैसे अभी तक मेरे कन्हैया को लेकर गाली, ये बदले क्या कैसे। वो गोपी बड़े सारों में पड़ गई, जब वापस जा रही थी कृष्ण दूसरे रास्ते में घूम कर आगे, कहते गोपी कहा बात है, मैंने तुम्हारे इतना पांव पड़ा, हाँ तुमने मेरा छोड़ी नहीं, देखा आज तुम अपना बेटे को ही तो चोर बना करके लाए हो, दूसरे दिन जाकर मेरे को पकड़ के लाओगे ना, देखो कि अपना खसम को भी चोर बना करके लाए हो, इसलिए कभी लाओगे मेरी कन्या को कान पकड़ती। ऐसे मैया को पास रोज शिकायत करती है, रोज ऐसी शिकायत करती है। जसोदा सोचती कहा बात है, क्यों ब्रज गोपियां रोज रोज ऐसी बोलती है, ऐसे और एक को भी बोलती है, एक को भी बोलती है, आज तो मैं कन्या को पकड़ करके नहीं लाऊंगी, घर में ताला बंद करके उनको बुला करके दिखाऊंगी, सचमुच से उन्होंने ताला बंद करके कृष्ण को चुरा के समय आए। जब आए देखा तो कृष्ण को उनको घर में खेलते हुए बहुत आश्चर्य पड़ गई, क्या ब्रज में कृष्ण दो दो कृष्ण हो गए। फिर तो ये आश्चर्य के बाद दूसरे घर में बताने के लिए तो देखा उसको घर में एक गोपी को गोद में बैठा करके खिला रही थी, और चक्कर पड़ गई कृष्ण कितने तीसरे घर में गए, देखा उनको सफा के साथ में खेलते हुए। जब चौथे घर में गई इतने में कन्या बोलती है, ब्रज गोपी को ये मत सोच मैं केवल तुम्हारे घर में आकर के पत्थर चुराता हूँ, ऐसे नहीं, जितनी ब्रज गोपियां जब गति बंधन करती है मेरे को बड़े प्यार से बुलाती है, कहते आज मेरे अंगना में आई वो नंदलाल, आई वो गोपाल, दर्शन तेरे दुख करिया जा, आज मेरे अंगना में आई वो नंदलाल, आई वो गोपाल, दर्शन तेरे दुख करिया जा, I'm going to go to the hospital. घर में झाड़ू लगाते समय यही समझो, जिससे ब्रज गोपियां घर में झाड़ू लगाती है, मेरे कन्हैया कब आओगे, मेरे घर में कृष्ण आएंगे, ऐसे हाथ में झाड़ू लगाओ, मुंह में कीर्तन करो, इधर रसोई बनाओ, इसके लिए भगवान के लिए रसोई बना रहे, और इधर प्रभु का नाम लो, एक साथ दो काम हो जाएगा। अभी मैया कृष्ण कीर्तन कर रही है, अब कृष्ण स्वयं पलंग के ऊपर में, जहां कृष्ण कीर्तन है, कृष्ण कहाँ रहते हैं, कृष्ण कहते हैं मद भक्ता का जत्र गायते तत्र तिष्ठति नारद। भगवान ने पूछा, नारद जी भगवान ने पूछा, प्रभु आप कहाँ निवास करते हो, एक नारद मत मेरे भक्त लोग जहाँ पर मेरे गुणगान करते हैं, मेरे कीर्तन करते हैं, मैं वहीं वास करता हूँ, और मैया यशोदा भी कृष्ण कीर्तन कर रही है, कृष्ण को नीति कहाँ से आ सकता है, वास मैया यशोदा की कीर्तन शब्द सुनते ही कन्या को नीति टूट गया, नीति टूटते ही बच्चों का स्वभाव होता है, वो उनको नीति टूटते ही मैया की स्तन पान करने के लिए मचलते हैं। अभी कृष्ण का आंख कर रहे हैं, कृष्ण ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मैया कहाँ है, लेकिन ऐसे ऐसे हाथ किया देखा मैया है नहीं, कहते मैया कहाँ गई, मैया कहाँ गई, देखा मैया तो थोड़ी दूर में वो प्रतिमा खड़ी कर रही थी, कृष्ण पेट के सहारा से बड़े कठिन से पर्वत को ऊपर से नीचे उतर, नीचे उतर करके धीरे धीरे आए, अरे मैया की छोटी पकड़ी, कहते मैया मेरे को भूख लग रहा है, मेरे को दूर पिला दे, भैया बोले नाला खराब हो जाओ, धूप निकला आएगा तो मक्खन नहीं निकलेगा, नाला खराब हो जाओ, फिर मेरे को भूख लग रहा है तो रुक जा। इतने में कृष्ण सामने आकर के रई को पकड़े, जानते हैं अगर ये काम नहीं बंद करूंगा तो ये मेरे को दूध नहीं पिलाएगी, दोनों हाथ से रई पकड़ी, भैया उसका देखिए अब हमें चला है, इतने में भैया दशा कन्या को गोद में ले करके दूध पिला लेंगे। जब दूध पिलाते समय इधर चूल्हे के ऊपर में वो दूध गर्म करने के लिए दूध चूल्हे गर्म कर रहे थे, गर्म करते समय वो दूध ये सोच रहा है, वो दूध अभी उबल रहा है, ये दूध का भावना है, क्या देखो लगता है मैं आज कृष्ण शरण में नहीं रख पाऊंगा, कहते क्यों, कहते भैया दशा का स्तर में संपूर्ण खीर समुद्र है, जो समुद्र जो हम नाम सुनते हैं, मैया जस्ता का स्तर एक भूत है, मैया जस्ता का स्तर में तो सारा विश्व ब्रह्मांड का भूत है, और कृष्ण का पेट कितना बड़ा, छोटे मंदिर नहीं, अनंत बड़ी विश्व ब्रह्मांड कृष्ण को पेट भर कर दी, हाँ कृष्ण का पेट भी भरने वाला नहीं, मैया जस्ता का दूध भी समाप्त होने वाला नहीं, फिर मैं क्या कृष्ण सेवा में नहीं लग पाऊंगा, इसलिए दूध ये सोच करके वो ऊपर ऊपर करके ये आग में उगली जा रहा था, ऐसे जीवन तो बेकार है, ऐसे जीवन जीवन को तो आग में कूद करके जीवन को समाप्त कर देना चाहिए, अगर ये जीवन कृष्ण सेवा में अगर नहीं लगे, लेकिन वो तो जसोदा है, जसो जटा जसोदा मतलब जो जस देती है, सभी को सम्मान देती है, सभी को कृष्ण सेवा में जो लगाती है जसोदा, जसोदा वही दूध, कोई चिंता मत करो, इधर कूद उपल रहा है उधर दूध भी उपल रहा है, जबरदस्ती गोद से उतार के बैठा किया और उधर तो दूध रखा करने के लिए गई, कन्हैया को बड़ा क्रोध हो गया, आधा बेटी भरानी जसोदा मेरे को गोद से उतार दी, लगा मैं आंख लाल हो गया, क्या करूं, देखा इतना बड़ा मटकी को हम अभी पलट देता हूँ, फेंक देता हूँ, लेकिन वो मटकी इतना बड़ा था उसको फेंक नहीं सका, वहां पर एक पत्थर पड़ा हुआ था, पत्थर को लेकर के नीचे से ऐसे मारे वो मटकी फूट गई, अभी तो मंथन कर रही थी, अभी तो बन गई मटका जैसे, अब तो धीरे धीरे मटका पूरा घर में फैल गया, कृष्ण के मटका फैल गया, कृष्ण ने देखा मैया यशोदा अभी आगे तो पिटाई गई, मैं उसे छोड़ दिया, पिटाई गई, फिर मैं कृष्ण वहां से भागे, वहां से भाग करके पास में दूसरे घर में गए, देखा ऊपर में छीके को ऊपर में मक्खन है, उन्होंने मक्खन को खड़े कर दिया और उसको ऊपर खड़े होकर के मक्खन को उतार रहे हैं, और जितने बंदर और जितने कौवा ने उनको बुला लिया, कौवा कौन है, रामलीला के परिवार है, क्योंकि बंदर कौन है, क्योंकि राम लीला में सीता का उद्धार के समय में जो बंदर ने मदद की, कहते बंदर भैया आ जाओ रामलीला में तो मैंने कुछ खिला नहीं खाया, अभी कृष्ण लीला में तो मैं बकरी खिला रहा हूँ, अभी सारे बंदर को तो एक करके तो बंदर को उसको मक्खन वितरण करने लगे। इतनी मैया यशोदा वहां दूध को रक्षा करने आई, देखी पूरा घर घर का मट्ठा फैला हुआ है, मैया यशोदा देखिए मट्टी टूटी गई तोड़ी गई मट्ठा कहाँ से निकलाया, नीचे देखा कि छेद कर दी। मैया यशोदा को बड़ा क्रोध लगा दिया, कभी अगर सांस की जवान की सांस के समय से ये मटकी तो उसे घी पी पी कर इतना एकदम ठोस हो गया तो उसको तोड़ दिए, अभी तो मैया यशोदा को बड़ा क्रोध लगा दिया, क्योंकि बंदर गया था नहीं वो चोर गया था, कभी चोर तो चोरी करता नहीं, ऐसे कुछ निशान छोड़ कर दिया था जो सियाल उसको पकड़ लेते, कृष्ण अपराधी वो भी कुछ निशान छोड़ कर गए, क्योंकि कृष्ण जब हम खड़े थे जब घर में पूरा फैल गया बैठा कृष्ण के चरण भी लगा, और कृष्ण जब धीरे धीरे गए उनका सुंदर चरण छाप भी बैठे बैठे गया था। तो प्रश्न होता है क्या कृष्ण को ये पता नहीं था, मैया जैसा आग गई और मेरा चरण जो छाप पड़ा हुआ है और इसी को देख चरण में पकड़ लेगी, क्या तुम पता नहीं था कृष्ण को, वो तो भगवान ही नहीं, लेकिन ये जो माया के द्वारा अपना जो सर्वज्ञ का को भुला देते हैं और एक शिक्षा देते हैं, अगर मुझे कोई भक्त सच दीन से अगर मुझे उतारे हृदय से अगर मुझे प्राप्त करने के लिए कोशिश करे मैं उनके लिए कुछ निशान छोड़ कर जाता हूँ, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं निशान छपत जुटना भजता प्रीति पूर्वक मुझे प्राप्त करने के लिए अगर कोई भक्त मुझे पुकारे उसको कहिए बुद्धि योग मैं स्वयं प्रदान करता हूँ, मैं स्वयं उनका रास्ता बना करके रखता हूँ, अगर मैं स्वयं पकड़ में नहीं आऊ विश्व ब्रह्मांड में कैसे इसलिए नहीं हुए जो कि अपना चेष्टा से मुझे पकड़ता है, इसलिए भक्त अगर मुझे तो उसकी रास्ता भी बना कर रखते हैं, अभी मैया यशोदा वो चरण छाप को देख करके धीरे 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 यशोदा चलने लगी, अभी कहीं तो कृष्ण मखन को वितरण कर रहे थे, इतने में एक एक कौवा उड़ने लगे, एक एक बंदर भी पीछे पीछे सरक रहे हैं, इधर कृष्ण ने कहा क्या बात है ये बंदर कौवा क्यों भाग रहे हैं, मैया तो आ रही थी सचमुच से पीछे देखे तो मैया आ ही गई, अभी मैया पकड़ने वाले थे, लेकिन कृष्ण पहले से मेन रोड का दरवाजा खोल कर रखे थे, अगर मैया आएगी तो मैं भाग जाऊंगा, अभी मैया के पीछे देखे तो कृष्ण छलांग लगा थी, छलांग लगा करके मेन रोड को जरूर समझने लगे, क्योंकि कृष्ण ये सोचे मैया तो घर की बहू है और मेन रोड के ऊपर मैं अगर मैं चला जाऊं तो घर की बहू किसी मेन रोड पे जाएगी मतलब जाएगी नहीं, इसलिए कृष्ण ये सोच करके, लेकिन उसी दिन था दीपावली, सारे जितने ब्रजवास को वो केवल बड़े लोगों को छोड़ करके सब गोवर्धन सब दीपाव दान के लिए वहां चले गए थे, वो कोई नहीं थे, मैया जो सोचो तू ये सोच रहे हो मैं घर की बहू हूँ और बाहर नहीं निकल सकती, आज कोई नहीं आज तक तुम हम पकड़ ही आई तुमको, मैया उसको पीछे भाग लगी, भगते भगते नहीं पकड़ पाए, जिनको ऋषि मुनियों का जो सुंदर हृदय जिनको कर और कर साल जिनको चरण कमल को ध्यान में लाने के लिए कोशिश करते हैं जिन चरण कमल को वो हृदय भी नहीं ला पाते, आज वो फरार कर सकते को मैया यशोदा उसको पीछे भाग रही पकड़ने के लिए, अभी जब मैया यशोदा पीछे भाग रही थी इतने में कन्या तो छोटे भाग रही है, मैया यशोदा थोड़ी तो मोटी है, अभी थोड़ी दूर तक हाफ गए इतने में कृष्ण ने देखा मैया को कितना भगा, अभी मैया यशोदा बेड़ी में और चोटी में सुंदर फूल भी ग्रंथन करके रखी थी, अभी जब मैया यशोदा भाग रही थी एक एक फूल भी गिर रहा था, फूल भी बता रहा है मैया चिंता मत करो आज सब हम मिलकर कन्या को पकड़ेंगे, वो ऐसे ही मोह मचाता है, लेकिन कृष्ण ने मैया यशोदा बोली कन्या खड़े रहोगे कि नहीं, अभी डंडा मारू अभी मारू इधर देख, इधर
कृष्ण पीछे रुका, भैया तो अभी ठंडा मारने वाले हैं। इतने में कृष्ण ऐसे कह रहे, कृष्ण वहीं पर खड़े हो गए। इतने में भैया जसदा कन्हैया को पकड़ लिए, तो कृष्ण तो है डर गए, हो ना हो भैया का तो विचार ही करे, भैया का तो विचार नहीं करेगा किस काल जिसको दर्द मारे सारे काम करना है। अभी वो काल है, जो काल है भैया जिसका तो डर रहे, अभी भैया जिसका हाथ पकड़ने के लाई कन्हैया सब सच बता, कहते बताओ कहते बताओ ये मट्टी किसने तोड़ी, बताओ किसने मट्टी तोड़ी। कहते भैया मैं सच बताऊ ना झूठ बताऊ, झूठ का क्या बात सच बता। कहते भैया जब दूध उभर रहा था, जब तुम भागते हुए गए ना, पता नहीं तुम प्यार में इतनी बड़े बड़े क्या कौला पहन कर रखी, तुम तो जल्दी मारे गई तो कौला से ठोकर लग गया तो वो मट्टी फूट गई। देखो कितना झूठ बोल रहा है इतना छोटा बच्चा, कहते मेरे प्रिया की कौला से टूट फूट गई। कहते बताओ कि बंदर को कौवा किसने मटन खिलाया, कहते जिसने बनाया उसने खिलाया, बनाया किसने उन्होंने तो बनाया, कहते जिसने बनाया उसने खिलाया। कहते तुम बहुत बड़ा चोर है, तुम बड़ा चोर हो। कहते भैया मेरा पिता तो साहूकार नंद बाबा है और कृष्ण का एक कोई मामा के रिश्ता नाम है चोर, तो कृष्ण ने सुन लिया था बोले भैया मेरे खानदान तो साहूकार का, मेरे पिता का नंद बाबा है वो तो राजा है, तुम्हारी खानदान में कोई चोर होगा तो खानदान का ये खानदान में कोई ऐसे कोई और गलत नहीं। भैया ने सुना तो देखो कितना छोटा बच्चा बात किस करता है। कहते कन्हैया ठीक बता तुम तो बहुत बड़ा चोर, तुम्हें बंदर हो, हाँ तुम्हें बंदर हो। कन्हैया बोले भैया अगर मैं बंदर हूँ तो छोड़ दे, मैं जंगल में बंदर के साथ में रहा करूंगा, मेरे को छोड़ दे, तो इस मेरे को मार के रखी है। भैया ने सोचा देखी कन्हैया हमारा क्रोध में, हाँ अगर छोड़ दू तो बुढ़ापा में मेरे की संतान मिला है, अभी अगर ये सचमुच से जंगल में चला जाएगा तो इसलिए मैया की चिंता सोची अभी इसको मैं बांध करके रख देती हूँ, बच्चा है थोड़ी देर बाद अपने आप चल जाएगा। इसलिए मैया जसोदा अपना बेड़ी चौथी को जो रस्सी को द्वारा बांध कर रख रही थी उसी को द्वारा ये कुकर को साथ में बांधने के लिए कोशिश की, लेकिन इसमें दो अंगुल कम पड़ गए। दूसरे गोपी को बोला और एक रस्सी ले जाओ, और एक रस्सी ले आओ, उसको भी दांत लगाई, उसमें भी दो अंगुल कम पड़ गई। जितने रस्सी की सारा रस्सी के रस्सी में दांत लगा दी, लेकिन उसमें दो तो किसी तरह से पूरी नहीं थी। जसोदा तो आश्चर्य में पड़ गई, क्या हो गया, लेकिन जसोदा शरीर से पसीना पसीना निकल गया, एकदम परेशान तो हो गई, किसी तरह से बांध नहीं पा रही। ब्रज गोपियां कहीं होकर के हंसी उड़ा रही थी, तो जसोदे लड़का ने तेरे लाला को बता रहे कि बंधन भारी के लिए कैसे लिखा है, मेरे कोख से जन्म ले मैं नहीं बांध सकती, आज तक बांध नहीं करके छोड़ूंगी। लेकिन जब किसी तरह से बांध नहीं पा रही, मन मुझे अपना गृह देवता ने सहला लगा, तेरे प्रभु आप मेरे लाल बचाओ, मेरे कोख से जन्म लिया आज इसको मैं बांध नहीं पा रही हूँ। जब उन्होंने सरना करने की और माता का परिश्रम को भगवान देख करके कहते माता परिश्रम पुष्पा कृपया आसीत सबल मने, माता का परिश्रम और उनको भगवत सरना वर्णन देख करके भगवान बंधन स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जहाँ जिसका बाहर जिसका भीतर नहीं कैसे उसकी काम करती थी। अभी मैया जसोदा कन्हैया को हाथ छोड़ करके घर का थोड़ी काम काज में गई है, इधर दूसरे घर का काम काज कर रही, इधर सखा लोग आ गए, सखा लोग आ करके उन लोगों ने कन्हैया को बोले सखाओं खोल दो हम जाकर खेल कूद करेंगे। सखाओं ने बड़ी कोशिश की इसको खोलने के लिए, लेकिन किसी तरह से खोल नहीं पाई। कहते क्यों, पर वो कोई साधारण दांत नहीं थी, वो प्रेम की दांत है, हाँ भगवान को मान सकता है वो था प्रेम, बात से का प्रेम की दांत है। अब ये सखा लो वो प्रेम से का नीचे है, हाँ वो दांत कैसे खोल सकते, बड़ा कोशिश किया। इतने में कृष्णा उन्होंने दूर में देखा तो वृक्ष है, जमराज ने देखा नारद मुनि का अभिसंपात से वो वृक्ष बनकर खड़े, और नारद ऋषि ने कहा था जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में आएंगे उनका चरण स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। अभी नारद ऋषि का कथा स्मरण करते हुए सखाओं को कहा सखाओं उसको पीछे धक्का लगा, सखा ने पता लगाए कृष्ण गोकुल पर चलते चलते कृष्ण को बीच में जब गए वो उखल अटक गया। कृष्ण थोड़ी सी खेसते ही इनके दोनों का दोनों पृथक धाम तक गिरी। इतने जोर से आवाज गुजरा को बच्चे का बच गया। सारे परिवार लोग भी उधर भागे। जब वहां पर आकर के देखा नंद बाबा कोई आंधी तूफान में ही ये बिल्कुल कैसे उड़ गया आश्चर्य पड़ गए। सखा ने कहा बाबा बाबा ये कृष्णा ने ही वृक्ष दो तो तोड़ दिए किसी ने विश्वास नहीं किया। नंद बाबा आ करके उन्होंने दांत बंद को खोल दिए और अपना पकड़ से लड्डू निकाल करके कृष्ण को हाथ में दिए। कन्हैया ये बताओ किसने ये तुमको बांधा। कहते मैया ने बांध दे। कहते जसोदे इतना निष्ठुर कैसे बन गए अभी ये वृक्ष गिर पड़ता तो भी क्या होता। नंद बाबा को बड़ा क्रोध हो गया। जसोदा भी वहां पर आकर तो बड़ी दुखी हो गई। मैंने भी हाथों से मैंने कैसे बांध दिया अगर सचमुच से पेड़ अगर गिर पड़ता तो मैं लाला ही पड़ जाता। बड़ा दुखी हो गई। नंद बाबा को बड़ा क्रोध आ गया। नंद बाबा को लाला किसने बांध दे भैया बोला किसने बोले पापा ने बाबा ने बोले बाबा किस पास में रहोगे। कहते बाबा के पास में रहूंगा मेरे को भैया मारती है कोई भी भैया के पास जाऊंगा नहीं। नंद बाबा को बड़ा क्रोध आ गया। कृष्ण बलराम ब्रह्मांड गए और दूध में मिश्री खिलाकर कृष्ण को खिलाए बलराम को खिलाए। लेकिन मैया यशोदा कितने दुखी हो गई। सवेरे सवेरे रसोई नहीं बनाई। अगर यशोदा रसोई नहीं बनाएगी तो फिर ब्रजवास कैसे रसोई बना सकते। इसलिए आज पूरा ब्रज के ब्रज लोग पूरे भूखे हैं। सवेरे से शाम तक किसी ने खाए नहीं। नंद बाबा भी भजन नहीं किए यशोदा भी भजन नहीं किए। अब जब शाम हो गया अभी नंद बाबा के क्रोध में कन्हैया और दाव भैया है। अभी इतने ब्रजवास में इतने बड़े 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 गोपियां आ गई। नंद बाबा ने कन्हैया आ गई। दाव भैया को बोले दाव भैया दाव बोले दाव जा। नंद बाबा का क्रोध से कन्हैया को मार करके जसोदा के क्रोध में छोड़ दी। अभी बलदेव प्रभु कृष्ण को पकड़ने के लिए गए तो कृष्ण ऐसे झटका मारे बलदेव प्रभु के गिर पड़े। अभी ब्रज गोपियों ने कहा कन्हैया मैया के पास नहीं आओगे तो नहीं मैं नहीं जाऊंगा मैया मेरे को मारती है मैं नहीं जाऊंगा। कहते अगर मैया को कहते सोओगे कहाँ। कहते नंद बाबा का क्रोध में कहते खाओगे क्या। कहते पिताजी हाँ धारा सा दूध में बिस्तर मिला करके पिला देंगे। कहते अगर भैया के पास नहीं जाओगे। कहते नहीं ब्रज गोपियों ने कहा अगर भैया ऐसे हो गए तो अगर भैया मर गई तो फिर क्या होगा। इतना बोलते ही कृष्ण को इतने रोना आ गया भैया 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 मर जाएगी भैया भैया करते करते नंद बाबा गोद से आकर के भैया जसोदा गोद में ले गए और भैया जसोदा कृष्ण को गोद में बांध के घूम घूम करके रोने लग गई और इतने ब्रजवास थे सब रोना प्रारंभ कर दिया। कृष्ण ने ऐसे ही ब्रजवासियों को अपना लीला रस द्वारा उसमें डुबो करके रखते थे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय सिया जय जय सिया जय जय सिया।
ऐसे ही कृष्ण की बहुत मधुर लीलाएं हैं।